السلام. علي قال لها صح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعاب رکاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. سگنل یہاں تک آ رہے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ لائیے پانی پلا دیجیے. جزاک اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ پانی کے پینے کے بعد کی دعا ہے، حدیث شریف کی دعا ہے کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور اس دعا کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دیکھو، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی، کہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے. ولم یجعلہ، آگے تشریف جائیے، یہ خالی جگہ کو پر کر لیجیے. اور ولم یجعلہ ملحن اجاجن بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں فرمایا. یہ پانی پینے کے بعد کی دعا، پہلے پانی پیئے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بیٹھ کر پانی پیئے، اور کم از کم تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، لہذا تین سانس سے زیادہ میں بھی پی سکتا ہے، کم از کم تین سانس میں سنت ہے. کیونکہ اگر پنجاب میں آیا اور پنجابی گلاس میں پلا دیا پانی، پھر کیا کرے گا؟ پھر جی لسی ہے اور وہ بھی پنجابی گلاس میں، اتنا بڑا ہوتا نا جی، تو پھر تو تین سانس میں پیے گا تو سانس ہی اکھڑ جائے گا. تو اس لیے میرے مرشد نے سکھایا کہ کم از کم تین سانس میں پانی پینا سنت ہے، تین، پانچ، سات اور زیادہ میں بھی. کہ لسی پنجاب کی اتنی مزیدار لگی اور سنا ہے کہ گجرا والے کے لوگ لسی بہت پیتے ہیں، بڑے ذوق اور شوق سے، سردی میں بھی نہیں چھوڑتے. تو اب وہاں کے ہے، اب وہ دل چاہ رہا ہے لیکن کیسے ٹھنڈا ٹھنڈا پیے، تو چسکی تھوڑا تھوڑا پیتا رہے، اور اس کے بعد اس دعا کو بھی یاد کر لے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی. یعنی ترجمہ یاد کر لے کہ اللہ تمام تعریف آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی رحمت سے میں میٹھا پانی پلایا. اور ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں فرمایا. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک کنواں تھا، تو اس کنویں سے پانی نکالا تو بدھنا مٹی کے برتن کو بولتے ہیں، تو وہ جو پانی پیا وہ کڑوا پانی تھا. اب اس کنویں سے پانی پیا تو وہ میٹھا تھا، لیکن وہی پانی اس برتن میں ڈالیں تو وہ کڑوا ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، जिस मिट्टी से ये बर्तन तैयार हुआ है, ये मिट्टी उस कब्र की है कि जिसमें साहिब कब्र को अजाब हो रहा है। तो हजरत ने हाजरीन से फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ो। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने लिए या किसी अपने मुसलमान भाई के लिए, उसका सवाब उसको मुंतकिल कर देगा, तो उसको उसकी मगफरत हो जाएगी। इसलिए अपने मुर्दों के लिए, अपने प्यारों के लिए इसको सवाब मामूल भी है कलमा शरीफ 70,000 मरतबा पढ़ ले, और अपने लिए भी पढ़ सकता है कि अपनी जिंदगी में स्टॉक बना के रख लिया कि जैसे पहले से हैं तैयारी करते हैं तो मरना तो एक दिन हमको है, रह के दुनिया में बशर को नहीं जेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि आन रहे के दुनिया में बशर को नहीं जेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है कजा, जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है कजा, मैं भी पीछे चली आती हूं, जरा ध्यान रहे। लगा है पहले से तैयारी कर ले, देख ली ना, जब ट्रेवलिंग करनी होती है, कोई सफर पर जाना होता है तो पहले से तैयारी करते हैं। ओ जी वहां पर पूछते हैं कि मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी, तो पहले से सर्दी है तो गर्म कपड़ा तैयार करके, क्योंकि मौजूद नहीं है चलो अभी से सिलवा लो, और शुगर वाले अपनी इंसुलिन या अपनी गोलियां वगैरह टेबलेट तैयार करके रखते हैं, हार्ट पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो अपनी तैयारी करके रखता है। तो थोड़े दिन के सफर के लिए कितनी महीनों से तैयारी होती है, तो जो हमेशा हमेशा का सफर होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए। हदीस शरीफ में 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने लिए, उसका तरीका मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर रोजाना 500 मरतबा पढ़ लिया तो 10 दिन में कितना हो गया 5,000, और एक महीने में हो गया 15,000, और पांच महीने में वो 15,000 हो जाएगा 75,000, क्योंकि 15 को 5 से ज़रब दे हो गया 75,000। तो क्या हुआ, 70,000 रख लिया, 5,000 और अपने लिए, अपने दादा दादी नाना नानी अब्बा अम्मा मामू, कितने रिश्तेदार हैं मेरे दोस्तों और कितने प्यारे महबूब दोस्त होते हैं जिनके लिए सवाब बख्श दिए। यहां पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने एक अजीब वाकया लिखा मिरकात के अंदर, जो कि मिशकात शरीफ की शरह है, अरबी जबान में है, कि शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक शख्स आया, एक नौजवान था, और काना मशहूरन फिल कश्फ, और वो कश्फ में मशहूर था कि उसको कश्फ बहुत होता है। खाना खा रहे थे तो अचानक वो नौजवान हंसने लगा, तो शेख मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह ने पूछा कि मा हाज़ा ज़ेह, ये तुम्हारा, वो रोने लगा, तो पूछा कि मा हाज़ल बुका, ये तेरा रोना कैसे है भाई। उसने क्या कहा, इन्नी अरा उम्मी फिल आदाब, मैं अपनी मां को कश्फ में देखता हूं कि वो आजाब में मुबतला है। तो शेख मुहियुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने चुपके चुपके अपने नफ्स में, अपने दिल ही दिल में, कि 70,000 का मेरा ये तहलील, इसको तहलील भी बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को, कि जो सवाब था तहलील का, मैंने दिल ही दिल में उसका सवाब उसकी मां को पहुंचा दिया कि अल्लाह ये जो मैंने अपने लिए रखा था तो ये सवाब आपको दे दिया उसकी मां के लिए। तो वो अचानक नौजवान हंसने लगा, तो पूछा महादस देख, ये तेरा हंसना कैसा है। उन्होंने कहा इन्नी अरा उम्मी फी हुस्निल माआब, मैं अपनी मां को बड़ी अच्छी हालत में, हुस्न माआब में यानी जन्नत में देखता हूं। लिहाजा फरमाते हैं शेख मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ से मैंने उस नौजवान के कश्फ की सेहत का एतबार कर लिया कि हां भाई उसको जो है कश्फ ठीक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में हुक्म फरमाया, मेरे मुर्शिद मेरे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाऊद बरकातहू फरमाते कि अल्लाह ताला फरमा रहे इस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने रब से मगफरत मांगते रहो। इस्तग़फिरू अम्र है और अम्र बनता है मुजारे से, यह अरबी की ग्रामर है। अरबी की ग्रामर क्या है कि हमारे यहां पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, यानी माजी हाल मुस्तकबिल, इसके लिए अलग अलग लफ्ज होता है। खाया, खाता है और खाएगा, अलग अलग हो गया ना। या अंग्रेजी के अंदर है तो उसके अंदर भी उसके लिए टेंसेस अलग है कि जिससे पता चलता है। लेकिन अरबी का ऐसा है कि माजी का लफ्ज अलग है और हाल और मुस्तकबिल उसको अरबी जबान में मुजारे बोलते हैं, वो एक ही होता है। और अम्र हुक्म देना ये मुजारे से बनता है अरबी ग्रामर के एतबार से। लहजा इस्तग़फ़िरू जब मुजारे से बना तो इसका मतलब ये है कि मग़फ़िरत मांगते रहो, यानी आज भी मांगो और मुस्तकबिल में भी मांगते रहो, छोड़ो नहीं। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहां हुक्म फरमाना इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत मांगते रहो, इस बात पर दलालत करता है कि हम लोग खताकार लोग हैं, हम लोग खताकार हैं, फिसल जाएंगे, हमसे गुनाह हो जाएगा, कोशिश भी करेंगे लेकिन कमजोरी की वजह से हम फिसल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इमरजेंसी के लिए एक मरहमत आ फरमा दिया कि अगर तुमसे बरबिनाए बशरियत कभी खता हो जाए, देखो जानबूझकर खता करना मत, क्योंकि अगर कोई मरहम अच्छी मौजूद हो, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी मेयार की मरहम हो कि जले और कटे को अच्छा कर देती है, तो उस मरहम के आसरे पर, सहारे पर कोई आदमी अपनी उंगली को जलाएगा या काटेगा? लेकिन फरमाया उसी तरह से तौबा के सहारे पर गुनाह करना कि जी तौबा से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, फरमाया अकलमंदी की अलामत नहीं है, क्योंकि हो सकता है तौबा करने का मौका ना मिले। तौबा हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, गुनाह किया और मौत आ गई, हालत गुनाह में मौत आ गई, फिर क्या आलम होगा? लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि जी फिल्में देख रहे हैं और कह रहे हैं आइंदा अब तौबा कर लेंगे, आइंदा नहीं देखेंगे। आलम यह हुआ कि ऐन फिल्म देखते हुए मौत आ गई और फिल्म भी नंगी फिल्म देखते हुए, कमरा बंद, छह छह घंटे गुजर गए। जी क्या हुआ? अब देखा, पता ये चला कि अब जो दरवाजा तोड़ा तो अंदर नंगी फिल्म चल रही है और वो मरा पड़ा है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि यह मत समझना मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है, जल्दी गुनाह छोड़ने में जल्दी करो, गुनाह छोड़ने में जल्दी करो, न जाने गुनाह की हालत में मौत आ गई तो क्या आलम होगा। इसलिए फरमाया जल्दी करो, जालिम अभी है फुर्सत तौबा ना देर कर। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कराची के बुजुर्ग इंतकाल फरमा गए, फरमाते हैं जिनकी मारिफुल कुरान बड़ी मशहूर किताब है तफसीर की, फरमाते हैं जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। जिसने तौबा, अगर गुनाह हो गया वो गिरा फिर उठकर खड़ा हो गया, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं वादा करता हूं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, तो क्या है कि फरमाया जल्दी करो तौबा करने में, जैसे गटर में गिर जाए, कपड़े में कोई गलाजत और गंदगी लग जाए तो इंतजार करता है, चलो अभी तो ऑफिस जा रहा हूं, अभी टाइम मेरे पास कम है, ऑफिस से आकर इसको धो लूंगा। क्यों साहब? ऑफिस नहीं जाता बल्कि फौरन आता है, दूसरे कपड़े बदल कर जाता है। कपड़ों का तो हमें इतना ख्याल है कि हमारे कपड़ों पर गलाजत और गंदगी लग जाए, फौरन धोते हैं, ताखीर नहीं करते, बल्कि अगर चाय गिर जाए तो छलांग मार कर बाथरूम में घुस जाते हैं, क्योंकि जरा देर उसको धोने में हो गई तो फिर वो धब्बा सर्फ से या किसी और भी डिटर्जेंट पाउडर से, किसी भी अच्छे से अच्छे पाउडर से, फिर वो धब्बा जाता नहीं है। कितना ब्लीच डाल लो, कुछ भी डाल लो, तो चाहे गिने फौरन छलांग मारकर धोने के लिए जाता है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम्हें अपने कपड़ों का तो इतना ख्याल है, लेकिन हाय अफसोस अपने दिल का ख्याल नहीं है कि गुनाह करके कि नहीं जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और अल्लाह की नाफरमानी के साए में जीते हो। वहां फौरन तौबा करो, फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगो। इधर आ जाइए मौलाना अफजल साहब, कुर्सी आपको कुर्सी चाहिए? अरे आप इधर आगे आगे आ जाए, आइए, देखो मौलाना की जगह बनाओ यार यहाँ पे, अब आपकी सोने या दिल का मामला है। अस्सलाम वालेकुम, फिर मान का उधार। हाँ अब आप बताइए अपने दिल का क्या हाल है? माशाल्लाह, आपके लिए बहुत दुआ की थी। आमीन। वो कहाँ गए मौलाना जो दूसरे भी साथ आए थे? अरे अरे आइए आइए जनाब, आइए आइए, अगे आ जाओ जी, अगे आ जाओ, साढ़े कोल आ जाओ जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो देखकर बहुत बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो बहुत ही यंग यंग बॉय मालूम हो रहे हैं। यंग मैन। الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مالک کا کرم ہے الحمدللہ. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ کے سہارے پر توبہ کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. دیکھیے نا صاحب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کپڑے پر تمہارے کوئی غلاظت گندگی لگ جائے دھونے میں دیر نہیں کرتے. ہائے افسوس دل پر گندگی لگ جائے دھونے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ فوراً اللہ سے معافی مانگو. اور فرمایا یہ عجیب چیز ہے اگر کوئی گناہ بندہ کر لے سات سمندر اپنے اوپر ڈالے تو وہ غلاظت اور گندگی دھل نہیں سکتی لیکن ایک قطرہ آنسو بہا دے اللہ اکبر اللہ اکبر 70 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے 50 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنے گناہ ہمارے کثرت میں ہو وہ معاف ہو جائیں گے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو. لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے تو دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نہیں نکلتا میں کیا کہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں ان جیسا ماموں ہے تو کوئی لاؤ کیونکہ رشتے کے ماموں تھے یہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ رشتے کے ماموں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو بات فرمائی وہ صرف دو صحابہ کو فرمایا. وہ کیا؟ بدر کا موقع ہے آپ نے فرمایا ارمی یا سعد اے سعد تیر چلاؤ. اپنے ترکش سے آپ نے تیر عطا فرمایا اور فرمایا کہ ارمی یا سعد اے سعد تیر چلاؤ فدا کا بھی و امی میرے ماں باپ تجھ سے قربان ہو. بتائیے نبی امتی کو فرمائے اللہ اکبر نبی امتی سے یہ ارشاد فرمائے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. یہ بات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ان دو صحابہ کو یہ شرف حاصل اور یہ نعمت حاصل ہے کہ آپ نے ان کے لیے فرمایا. یہ سعد بن ابی وقاص اور ان کو یہ بھی دعا دی اللہم سدد سهمہ کہ اللہ ان کے نشانے کو بالکل جو تیر کا نشانہ بالکل درست لگے اور وہ واجب دعوت ہو اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. لہذا نتیجہ یہ ہوتا کہ حضرت سعد بن نے جب یہ پہلے فرماتے ہو اولو ان کے بارے میں فرماتے ہیں محدثین کہ ہوا اولو من رمس سہما فی سبیل اللہ تعالی کہ یہ پہلے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. اور جب تیر چلایا تو وہ ایک کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا تیر مارا اس کی پیشانی پہ لگا وہ دھڑام سے گرا اس کی سطر کھل گیا لنگی کھل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو آپ ہنس پڑے حتی بدت نواجزہ یہاں تک کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی کھل گئی. اور ان کی دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے. نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ بھی ان سے دعا کرواتے تھے ایسے مستجاب الدعوات تھی دعائیں قبول ہوتی تھی ان کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بات کہ ہائے میرا دل سخت ہو گیا ہے روتی ہے خلق. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم بھی تر نہیں ہے. خلوق تو میری خرابی کو دیکھتی ہے کہ ہائے ظالم کو دیکھو کیا عالم ہے مسلمان ہو کر. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر خفاش رفت در کورو کبوت اگر چمگادڑ پیشاب پخانے کی نالیوں میں جا کر پیشاب پخانا چوسے نافرمائی کرے. فرماتے ہیں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے کہ اگر کافر یہ کام کر رہا ہے کہ گٹر لائنوں میں گھسا ہوا ہے ظالم جو ہے بدمائشی کے کام کرتا ہے شراب زنا بدمائشیاں کرتا ہے. فرماتے ہیں ہمیں اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن باز سلطا دیدرا بارہ چبوت جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی پھر حج و عمرہ کی سعادت تبلیغ میں جانا اللہ والوں سے تعلق ہے علماء سے تعلق ہے اپنے حضور میں 5 ٹائم سجدہ کرنے کی نعمت عطا فرماتے ہیں ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اگر وہ ظالم یہ کٹر لائنوں میں گھستا ہے یہ کام کرتا ہے تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اس پر بہت تعجب ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. جیسے مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑا شرف عطا فرمایا جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا جنت کا ٹکٹ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے پیارے دوستوں یہ جنت کا ٹکٹ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیا لہذا اسی یہ ٹکٹ ہمارے پاس ہے تو مسجد میں آ سکتے ہیں ورنہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. کیوں جناب؟ یہ ٹکٹ موجود ہے مسجد میں آ سکتے ہیں گیٹ پاس سب کے لگا ہوا ہے
وہ لگا ہوا ہے, وہ خود بخود مسجد میں اس میں قدم اٹھ رہے ہیں, لیکن وہ عاشق مسجد میں آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. وہ عاشق یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا, وہ کہتا ہے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے کرم سے مجھے مسجد میں بھیج دیا, توفیق عطا فرما دی کہ میں آپ کی محبت کی کچھ بات پیش کروں, مجھے توفیق عطا فرما دی, آپ نے میرے دونوں کان سے پکڑ کر بٹھا دیا, کان کو توفیق عطا فرما دی کہ آپ کی بات سنوں. یہ ان کا کرم ہے, ہمارا بولنا آپ کا سننا, ہمارا بولنا آپ کا سننا, اور ہمارا سننا بھی, کیونکہ سننا بھی تو ہے, یہ ان کا کرم ہے میرے دوستو. یہ نہیں کہے کہ جی میں آیا, میں نے بیان میں شرکت کی, یا میں اتنا سفر کر کے آیا, میں تقریر کر رہا ہوں, یا میں بیان میں شرکت کر رہا ہوں, میں نے احسان کیا. نہ میرے دوستو, کسی کا احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دی اپنے نام پر جمع ہونے کی. یہ ان کا کرم ہے, یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ کرم, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں, الہ آباد کے اندر میں اپنے مرشد حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا, 11 بجے تک رہا, پھر 11 بجے اپنی جائے مقام جائے قیام پر آ گیا. تو دیکھا شاہ محمد احمد صاحب 70 برس سے زیادہ بوڑھے تھے, اسی وقت سائیکل رکشا پر تشریف لائے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا, میں دوڑ کر کے آ کے, حضرت ابھی تو میں آپ کے پاس سے حاضر ہوا تھا, کوئی حکم تھا آپ مجھے یاد فرما لیتے, میں خود حاضر خدمت ہو جاتا. تو کیا فرمایا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب یہ میرے شیخ کے مشائخ میں سے, فرماتے ہیں کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت, سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. ارے اللہ کا کرم ہے میرے دوستو, اپنا کمال نہ سمجھے اس کو. مقرر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے, کہ اللہ نماز کی توفیق دی, یا اللہ مال آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی, حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائی, ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ اور تبلیغ میں جانے کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ آپ کا کتنا احسان ہے, یہ آپ کا کرم ہے. مرشد فرماتے کہ دیکھو, اللہ کی نافرمانی پر راضی رہنا, اور کہ جی ابھی تو ڈسکے سے گجرا والے تک جانا ہے, اگر ایک ہی جگہ بدنظری کر کے توبہ کر لی تو راستے میں جو اور حسین نظر آئیں گے ان کا پھر کیا ہوگا, پھر تو ان کو نہیں دیکھنا پڑے گا. تو بازے کہتے کہ اگر اب واقعی توبہ کر لی تو ابھی تو ہماری فیورٹ اداکاری کی اور بھی فلمیں آنے والی ہیں, ریلیز ہونے والی ہیں, ان کو کیسے دیکھوں گا میں, تو اور ساری کئی میری مراحل ہیں, منازل ہیں, ابھی تو بہت سارے معاملات طے ہونے. اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جلدی کر لو توبہ میں, تو میرے پیارے دوستو موت کا وقت پتا نہیں ہے, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ہاں, اس لیے فرمایا میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی, فرمایا ایک آدمی مان لو مثال ہے ڈسکا سے گجرا والے گیا, اور گجرا والے سے ڈسکا آیا, راستے میں 200-250 عورتوں کو دیکھا بدنظری کی, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا, کوئی شریف آدمی غیرت آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری ماں میری بہن بیٹی اور بیوی کو کوئی دیکھے, کیوں جناب, شریف اور غیرت مند آدمی نہیں پسند کرتا. تو ہم جب ہم نہیں پسند کرتے تو ہم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو کیوں دیکھے, تو پھر کہہ گئے اسی کیوں ویکھا جی. مرشد نے سنا ایک گجراتی, گجرات کے لوگ ہوتے نا, ایک گجراتی گیا اپنے گجراتیوں میں جا کر کہا, ارے یارو میں پنجاب سے ہو کر آ رہا ہوں, ہم اور تم تو 6 نمبر میں پھنسے ہوئے, ہارو 6 مزے میں 6 سارو 6, وہ اپنی زبان میں 6-6 بہت بولتے ہیں. انہوں نے کہا وہ پنجاب کے لوگوں کو دیکھو 80 تک پہنچ گئے, 80 تو اسی کرتے رہتے ہیں, وہ تو 80 تک پہنچ گئے, ہم تو 6 میں پھنسے ہوئے ابھی تک. اب وہ مان لو بدنظری کر کے گیا, بدنظری کر تب آیا, کتنی 200-250 عورتوں کو دیکھا, مان لو جب گھر واپس آئے گا کتنی ہوگی اس کے ساتھ, ایک بھی نہیں. کیا حماقت کا گناہ ہے, نہ ملنا نہ جلنا, مفت میں اپنے دل کو جلانا تڑپانا کلپانا. اب فلم دیکھ رہے کہ جی میری ہاٹ فیوریٹ, شی از مائی آئیڈیل, مائی ہاٹ فیوریٹ ایکٹریس کی تصویر لگائی ہے کمرے میں کمپیوٹر پہ, और वॉलेट के अंदर और कहां कहां रखी हुई है। लेकिन जिस हॉलीवुड लॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकारा पर आशिक है उसको खबर है कि मेरा एक आशिक डस्के में भी रहता है? खबर ही नहीं है। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं सिला इश्क मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, सिला इश्क मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, कि आशिक रोते रहते हैं और सनम खुश होता रहता है, उसको खबर ही नहीं है। इसका नाम है वन साइडेड लव अफेयर, कि एक तरफा ट्रैफिक चल रही है, कि यहां पर मान लो कि उसकी मोहब्बत में किसी लड़की की मोहब्बत में रो रहा है या अदाकार है कि उसको खबर लगेगी, खबे खबर है। और लेकिन कुर्बान जाइए उस मालिक की मोहब्बत पर कि जात तन्हाई के अंदर अंधेरे के अंदर वो बंदा एक आंसू गिराता है, अल्लाह ताला को उस बंदे की भी खबर है, ऐसा बाखबर है। लिहाजा उस आंसू का इनाम ये मिल रहा है। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सात किस्म के लोगों को अर्श का साया मिलेगा, जिसमें एक वो भी है रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, कि वो बंदा जो तन्हाई के अंदर अल्लाह की याद में मोहब्बत से या उसके खौफ में रोता है और उसकी आंखें भर आती हैं, ऐसे शख्स को कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। दादा वो आंसू जो अपनी गुनाहों की वजह से नदामत से निकल रहे हैं उनकी वजह से अर्श का साया मिल रहा है, और वो आंसू जो इन लड़कों की मोहब्बत में औरतों की मोहब्बत में इस फानी मोहब्बत में निकलते हैं वो आंसू मेरे मुर्शिद फरमाते गधे के पेशाब से भी बदतर है। और वो आंसू सुभान अल्लाह रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बराबर मी कुनत शाहे मजीद, वो बुजुर्गी वाला शाह वो हमारा मालिक की बराबर मी कुनत, बराबर तो लेगा किस चीज को, की बराबर मी कुनत शाहे मजीद अश्करा दरवज़न बाखूने शहीद, कि अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदू के आंसुओं को शहीद के खून के बराबर वजन फरमाएगा। बड़ी है एक आंसू वो जो इन लैलाओं की मोहब्बत में गिर रहा है, रोना तो वहां भी पड़ता है कि नहीं पड़ता, रोना पड़ता है, वल्ला गालियां खानी पड़ती हैं, इज्जतें उछल जाती हैं, जलील खार हो जाता है और आखिर में कुछ भी नहीं मिलता, रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। और एक उस मौला की मोहब्बत में लैला की मोहब्बत में रोने वाले को सब कहते हैं क्या कमीनेपन का बेशर्मी के काम कर रहे हो तुम ये, और उस मौला की मोहब्बत में रोने वाले को पता चल जाए, मेरे मुर्शिद फरमाते अजीब जुमला याद, अपने शेख की बात याद आई, मेरे मुर्शिद फरमाते कि देखो अगर लैला का आशिक पकड़ा जाए बाजार में तो क्या होता है, सारे जूते मारते हैं। क्यों जनाब, भरे बाजार में जूते पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? लैला के आशिक की खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं, भरे बाजार में जूते पड़ते हैं, उसको गालियां मिलती है। और फरमाया मौला के जो आशिक होते हैं उनके जूते उठाए जाते हैं, और उनकी जूते उठाना अल्लाह अकबर, अब हम अपनी सादत समझते हैं, अल्लाह वालों की जूते उठाना। अल्लाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आह कि अल्लाह वालों की जूतों की तो क्या कहना, उनकी जूतियों में जो खाक के जर्रे लगे हैं वो बादशाहों के ताजों के मोतियों से अफजल हैं। लो जी मौलाना अफजल शाकिर साहब आ गए, आ गए ना खुद ब खुद अफजल। हाँ वो जो खाक के जर्रे अल्लाह वालों की जूतियों से लगे हैं वो बादशाहों के ताजों के मोतियों से भी अफजल है। मेरे प्यारे दोस्तों मौला लैला के आशिकों की खोपड़ी पर जूते पड़ते हैं और भरे बाजार में जूते पड़ते हैं और सब कहते हैं मारो साले को, साला बनना पड़ता है वहां पर आ, और मौला के आशिकों के जूते उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुझी देखना चाहे फैसला कर ले हम लोग कि लैला की मोहब्बत हमारे कि दिल तो बहुत चाहता है लेकिन लैला की मोहब्बत में हमें फायदा है या मौला की मोहब्बत में फायदा है। इधर सामने की तरफ आ जाए, इधर आ जाइए, जगह बहुत है माशाल्लाह। कि फैसला करने की चीज है कि क्या काम आने वाली चीज है। मेरे दोस्तों एक फानी मोहब्बत है, और फिर जिसकी मोहब्बत में आज आंसू बहा रहे हैं, जिसको मोबाइल दिला रहे हैं, जिसके मोबाइल में बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, इजी लोड हो रहा है, और जिसको लस्सियां पिला रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं और रसगुल्ले खिला रहे हैं, कपड़े दिलाए जा रहे हैं, एक दिन वही नानी दादी बन जाएगी, आंखों पर पौने 12 नंबर का चश्मा। मेरे मुर्शिद फरमाते मजनू था ना लैला मजनू, फरमाते अगर मजनू लैला का बुढ़ापा देख लेता वो कैसे, उसके काले बाल सफेद हो गए, उसकी माथे पर झुर्रियां पड़ गई, आंखों पर 12 नंबर का चश्मा लग गया मोटे शीशे वाला, और जिन आंखों से शरबत रूह अफजा टपक रहा है अब उन्हीं आंखों से कीचड़ बहने लगा, और जिनके गाल को कह रहे हैं कि टमाटर जैसे गाल और कंधारी अनार जैसे गाल, वही गाल एक एक इंच अंदर धस गए, और जिन दांतों के शटरिंग की वजह से वो गाल कायम थे वो दांत को निकालकर उस पर मसूरी दांत का टूथब्रश हो रहा है कोलगेट का, और मुंह टेढ़ा हो गया, और गर्दन में राशा, हाथ में राशा, कमर झुके मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, और उनके बालों पे गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, अब वो नानी अम्मा आई है ऐसे लठिया टेकती हुई। मजनू अगर इस हालत में उसको देख लेता क्या आलम होता, खून के आंसू रोता कि नहीं रोता, कि हाय मैंने अपनी जवानी अपनी जिंदगी अपना माल अपना वक्त अपना ईमान कहां बर्बाद किया। रोना पड़ेगा कि नहीं भाई इन लैलाओं के चक्कर में। इसलिए फरमाया, मेरे शेख फरमाते हैं कि इनसे दिल मत लगाओ, ये दिल लगाने के लिए अपनी बीवी पर राजी रहो और नाशुक्री मत करो। ये कहते हैं अरे साहब अब्बा को देखो, हम बाजार में जाते हैं सड़कों पे जाते हैं, कैसी स्मार्ट कैसी गॉर्जियस कैसी स्वीटी कैसी क्यूटी कैसे कैसे, और हमारी अम्मा को देखो 12 नंबर का चश्मा लगाकर देखा, वो भी शीशा साफ नहीं किया था, हमारे लिए कैसे उठा के ले आई। ये शैतान नाशुक्री में मुबतला करता है। ये जो हमारी बीवियां हैं ये नेमत है, नेमत है, ये जो असल में हम माओं को या कहते कि ऐसी लाई, ये हम अल्लाह ताला पर एतराज कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ता फरमाते हैं वो बीवी उस पर राजी रहे। अरे भाई कितनी हसीन हो, बुढ़ी होगी कि नहीं होगी, हर एक का यही तमाशा होने वाला है, लिहाजा इनसे दिल न लगाए। ये क्या मेरे शेख फरमाए, अजीब बात फरमाए, फरमाए कि अगर किसी की मान लो बीवी हुस्न में कम भी है, अगर मान लो कम भी है तो क्या है भाई, तुम जब सफर में जाते हो ट्रेन में जाते हो तो प्लेटफार्म की चाय पीते हैं तो कहते हैं चलो कुछ नहीं चाय तो नहीं है नजला जुकाम से तो बचा लेगी। तो फरमाए अगर हुस्न है में कम भी है तो मियां तकवा से रहने के लिए काफी है, उससे नेक साले औलाद मिल जाए वो काफी है, जन्नत में ये बीवियां मुसलमान बीवियां औरतों से ज्यादा हसीन होंगी। तुम मैं सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी मां ने सवाल किया कि मुसलमान औरतें ज्यादा हसीन होगी या हूरे हसीन होगी, तो आप सबने इरशाद फरमाया कि मुसलमान बीबियां हूरों से ज्यादा और हसीन होंगी। तो पूछा क्या वजह, इरशाद फरमाया बिसलातिहिन्ना व बिसियामिहिन्ना अपनी नमाजों की वजह से अपनी रोजों की वजह से व बि इबादतिहिन्ना अपनी इबादतों की वजह से अलबसल्लाहु ताला नूर इबादतिहिन्ना अला वुजूहिहिन्ना अल्लाह ताला उनकी इबादत के अनवारात को उनके चेहरे पर डाल देंगे जिससे उनका ऐसा ब्यूटी पार्लर होगा कि हूरों से भी ज्यादा हसीन हो जाएंगे। मेरे मुर्शिद मौलाना मेरे मुर्शिद हिंदुस्तान जब तशरीफ ले गए ना तो हजरत ने इलाहाबाद में बयान किया तो वहीं पर एक शेखुल हदीस मां कमर उज़्ज़मान साहब उनके घर वालों ने वो आए, वो हजरत के साथी भी हैं बैतुल उलूम मदरसे के, तो उनके उन्होंने कहा कि हजरत मेरी घरवाली जो है वो आपकी दावत नाश्ते की करना चाहती है। कहा पूछा कि हजरत ने पूछा वो क्यों कहा कि मुझे उसने कहा कि तू इतना बड़ा मौलवी है इतना बड़ा शेखुल हदीस बना हुआ है लेकिन आज तक तूने ये हदीस शरीफ हमें क्यों नहीं सुनाई। कहा ये देखो मौलाना साहब पाकिस्तान कराची से आए इन्होंने हमें ये सुनाई, मैं इनकी तगड़ी नाश्ते की दावत करूंगी। अच्छा अपनी बीवियों को यह भी सुना दे जाकर, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे नाश्ता करना, उनका दिल खुश करना। एक मौलवी साहब की दावत थी तो उनके दोस्त था, उन्होंने कहा खाना खाया, माशाल्लाह भाई जजाकिल्ला बड़ा मजेदार खाना था जी बहुत मजा आया, अपनी घरवाली का जाकर शुक्रिया अदा कर दो। वो मौलवी साहब गए और जाकर बीवी को कहा कि भाई वो मौलवी साहब कह रहे, वो साहब गए मेजबान मौलवी साहब कह रहे कि खाना बड़ा मजेदार था वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बीवी ने रोना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा भाई तू रोती क्यों, वो तो तेरी तारीफ कर रहे शुक्रिया अदा कर रहे। तो उसने कहा 25 साल तुझे खाना खिलाया आज तक तूने तारीफ नहीं की। वो देख मौलवी साहब ने पहली दफा खाना खाया कितनी तारीफ कर रहे हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खाली साहब इधर आ जाइए ना, आइए आइए और आगे आ जाए बेटा आप थोड़ा सा उधर हो, आगे आ जाए आगे आइए हमें मजा आएगा जरा ये अच्छा अच्छा देखो ना शक्ल तो दिखाओ भाई इतनी दूर से आपको देखने आए फिर भी दूर रहे तो कैसे मजा आएगा बेटा आप थोड़ा सा शाबाश माशाल्लाह। तो अब वो मौलवी साहब को आकर बताया कि भाई वो बीवी को तो मैंने जाकर बोला तो उसने तो रोना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने कहा भाई ये तो बुरी बात है, अपनी बीवियां कहें तो उनकी थोड़ी तारीफ कर दिया करो। उन्होंने कहा अच्छा भाई। अगले दिन वो दुकान से वापस आए, बीवी ने खाना लाकर रखा, खाना खाना शुरू किया, दो तीन नवाले खाए, वाह वाह बड़ा मजेदार खाना जी सुभान अल्लाह, बीवी ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा भाई रोती क्यों है, खाने की तारीफ करो फिर क्यों रोती है। उसने कहा 25 साल तुझे खाना खिलाया आज तक तूने तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने खाना भेजा इतनी तारीफ करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्ज किया था कि अगर कोई ये कहे कि मेरा दिल सख्त हो गया मुझे रोना नहीं आता तो कुर्बान जाइए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाते हैं कि क्या इबकू रो, फइल्लम तबकू रोना नहीं आ रहा, फतबाकू रोने वालों की शक्ल बना ला, बनाकर भेस फकीरों का गालिब, बनाकर भेस फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, फिर माला की मोहब्बत का तमाशा देखे। इसलिए फरमाया रोना नहीं आ रहा रोने वाले की शक्ल बनाओ। तो अल्लाह ताला के हुक्म नाजिल फरमाना इस्तग़फिरू रब्बकुम, मेरे शेख ने फरमाया मुजारे से बना ये अमर, अमर मुजारे से बना, क्या मतलब हमसे गुनाह होते रहेंगे, चलो हम तुम्हें ऐसा केमिकल दे रहे हैं कभी तुमसे बरबिनाए खशरियत बरबिनाए बशरियत तुम फिसल जाओ तो तौबा का केमिकल लगाना, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए, तौबा के सहारे पर गुनाह मत करना, इमरजेंसी के लिए कभी अगर हो जाए तो तौबा का केमिकल मौजूद है, फौरन रोना गाना इस्तग़फार करना और हम तुम्हें फिर अपना बना लेंगे। इसलिए फरमाया क्या इस्तग़फिरु रब्बकुम। एक बात और फरमाई, कहते हैं जी अल्लाह ताला से माफी मांगते शर्म आती है कि, तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने यहां फरमाया रब्बकुम तुम्हारा रब, किससे माफी मांगनी, रब से, रब के माने पालने वाला। कोई अपने माँ बाप से माफी मांगते हुए कहते हुए शर्म आती है भाई, क्यों, कहते जी वो तो हमारे माँ बाप है उनका दिल बहुत बड़ा है। जिसने माँ बाप अता फरमाए ये पालने वाले मानवी मजाजी तौर पे पालने वाले हैं, वसीला है, असली पालने वाला तो अल्लाह है। हाय वसीले पर हम इतना एतमाद करते हैं कि मेरे माँ बाप उनका दिल इतना बड़ा है, तो जिसने वो माँ बाप अता फरमाए वो मालिक कितना बड़ा होगा मेरे दोस्तों। और रब नाजिल करके एक बात और इशारा कर दिया कि रब के माने पालने वाला, और पालने की वजह से मोहब्बत होती है, लिहाजा पालने वाले को, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं पालने वाले को अपनी पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है और पाली हुई चीज को अपने पालने वाले से मोहब्बत होती है। लिहाजा इस्तग़फिरू रब्बकुम के अंदर हुक्म क्या है, अरे भाई तुम किसी गैर से थोड़ी माफी मांगने कह रहे, बल्कि तुम जाओ जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ कोई नालायकी करे तो अब वो माफी नहीं मांग रहा, कहते अरे भाई तेरा अब्बा तो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना माफ करने वाला है, इतना दिल का सखी है, इतना दिल का बड़ा है, अरे जा जालिम माफी मांग, तेरा अब्बा तो जल्दी माफ कर देता है। तो यही सिखा रहे हैं कि अरे तुम अपने रब्बा से माफी मांगो, इतना करीम है, वो गुनाह को बख्शने वाला है, माफ फरमाने वाला है, इनायत और मेहरबानियां फरमाने वाला है, कितने एहसानात उसने पैदाइश से लेकर आज तक हम पर फरमाए, उससे माफी मांगते हुए शर्माना, वो तो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत की वजह से जल्दी माफ फरमा देगा। तो मोहब्बत की वजह से जल्दी माफ, जिससे मोहब्बत होती है जल्दी माफ करता है कि नहीं करता उसको। आगे क्या फरमाया और समझाने के लिए, इन्नहु काना गफ्फारा, सुभान अल्लाह, गाफिर नहीं गफ्फार है, यानी बख्शने वाला है सिर्फ नहीं बल्कि बहुत बख्शने वाला है। मेरे मुर्शिद ने इसी तरह इसका तर्जुमा किया कि बहुत बख्शने वाला है। हजरत ने एक दफा फरमाया कि गफ्फार का लिफ्ट जो है ना, गफ्फार का लिफ्ट खैचो ऊपर तक आसमान तक चला गया, यानी गैर महदूद है वो। लिहाजा हमारे गुनाह, इसलिए हजरत का एक जुमला याद आया, सुभान अल्लाह, बाजे कहते हैं ना जी, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी बाजे कहते हैं कि साहब हम तो इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को कैसे बख्शेंगे। फरमाया बजाय तो ये आजिज़ी मालूम होती है, देखो कितना आजिज़ है ये। हकीम उल उम्मत फरमाते हैं ये दर हकीकत इंतहा दर्जे का तकब्बुर है, ये मुतकब्बिर आदमी है ये, कि अपने गुनाहों को अल्लाह ताला की रहमत से ज्यादा बड़ा समझ रहा है। इसलिए अल्फाज का सीखना भी जरूरी है कि क्या अल्फाज अदा करें। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो बाज कहते ना जी हमारे गुनाह तो साहब क्या कहे गैर महदूद है, फरमाया नहीं, हमारे गुनाह गैर महदूद हो ही नहीं सकते। उसकी दलील क्या, दो बातें, नंबर एक हमारे गुनाह क्वांटिटी में आ सकते हैं, यानी हम उसको गिन भी सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं कि जी एक गुनाह क्या 10 लाख गुनाह के, 20 लाख, 20 करोड़, लगभग वो आदत में आ सकता है, गिना जा सकता है मादूद, या अगर इतना नहीं गिना जा सकता तो ये गिन सकते हैं कि 10 साल गुनाह किया, 20 साल गुनाह किया, 25 साल, 50 साल गुनाह किया ना, तो महदूद हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, कसीर तो है लेकिन महदूद है। सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हमारे गुनाह बावजूद अपनी अक्सरियत के महदूद है, और अल्लाह ताला की गैर महदूद सिफत रहमत और मगफरत के सामने अकलियत में है। यह हजरत का जुमला है कि हमारे गुनाह बावजूद अपनी कसरत के महदूद हैं, और अल्लाह ताला की सिफत मगफरत गैर महदूद है कि महदूद है? गैर महदूद है। तो अल्लाह ताला की सिफत मगफरत गैर महदूदा के सामने अकलियत में, माइनॉरिटी में, बावजूद मेजॉरिटी के होने के, कसरत में होने के, अल्लाह ताला की सिफत मगफरत और रहमत के सामने वो क्या है? माइनॉरिटी और अकलियत में है। लगा जो चीज अकलियत में है उसको माफ करना क्या मुश्किल है भाई? अब आगे इनाम फरमा रहे हैं कि देखो, तो तरगीब दे दी कि देखो तुम्हें हम ऐसा केमिकल दे रहे हैं कि अगर कभी तुमसे फिसल जाए, गुनाह तौबा के सहारे पर, इस केमिकल के सहारे पर, इस ऑइंटमेंट और मरहम के सहारे पर गुनाह करना मत। ये अकलमंदी नहीं है कि जी तौबा कर लेंगे। तौबा इख्तियार की चीज नहीं है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि आज से 30-40 साल पहले नाजमाबाद कराची के अंदर एक बावर्ची था, बदनजरी का मरीज, औरतों को देखना, फिल्में देखना, लड़कों को देखना, तस्वीरें देखना, इसकी की आदत पक्का, आदि मुजरिम। उसको हमारे शेख के पास बैठने वाले हजरत के एक मुरीद समझाते थे, भाई देखो ये कमीनेपन का काम है, शराफत नहीं है, शरीफों का काम नहीं है किसी की मां बहन पराई बहू बेटियों को देखना, शरीफों वाला काम नहीं है। वो मानते नहीं थे। हजरत को खुद सुनाया कि उसके मरने का वक्त करीब आ गया, अब रूह निकल ले रही। तो वही जो हमारे पीर भाई वो गए उनके पास और उनको जाकर समझाने लगे कि भाई तुमने इतनी गुनाह वगैरह किए, अब अल्लाह से माफी मांग लो और तौबा कर लो। तो वो क्या कहता है? कहता है बिस्कुट, चाय, अखबार, किताब, अल्फाज लेकर सब लफ्ज मेरे मुंह से निकल रहे, लेकिन जो लफ्ज तुम कह रहे हो यानी तौबा, ये मेरे मुंह पर आ ही नहीं रहा। इसलिए ऐसा ना हो मेरे दोस्तों कि हमारे गुनाह वो हद क्रॉस कर जाए कि उसके बाद तौफीक तौबा भी सल्ब हो जाए। इसने फरमाया कि गुनाह के सहारे पर, तौबा के सहारे पर गुनाह मत करो, जल्दी से अल्लाह से माफी मांग लो। कि जैसे अगर गटर में गिर जाए, गलाजत लग जाए, धोने में देर नहीं करता, ऐसे ही तौबा गुनाह हो जाए। शेख मोहियुद्दीन अबू जकरिया मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर फरमाते हैं, नवी इमाम मोहिद्दीन नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जिस जमीन पर गुनाह हो उस जमीन से आगे मत बढ़ो, पहले वहां पर अल्लाह से माफी मांगो फिर आगे बढ़ो, ताकि कयामत के दिन अगर वो जमीन गवाही दे कि अल्लाह इसने नाफरमानी की थी, गुनाह किया था, तो वो साथ में कहते अल्लाह ताला माफी भी मांग ली थी इसने। हिसाब फरमा बराबर करो। ये ना कहे, और ये ना कहे कि जी हमने गुनाह किए कौन से, ये अजीब आलम है। क्योंकि बास गुनाह ऐसे जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते, जैसे दाढ़ी का मुंडाना, इसको हम गुनाह ही नहीं समझते कि दाढ़ी शेव करना या उसको ट्रिम करना एक मुट्ठी से कम। मेरे दोस्तों और क्या, अच्छा बाजों का एक अजीब है, एक साहब ने बताया, ओ जी दाढ़ी तो अगर किसी ने एक मरता शुरू से नहीं रखी तो कोई गुनाह नहीं है, हाँ रखने के बाद काटना यह बहुत बड़े गुनाह की बात है। तो भाई ये मसला नहीं है, मसला ये कि शुरू से ही दाढ़ी का मुंडाना यानी शेव करना या एक मुट्ठी से उसको एक चावल के दाने के बराबर ट्रिम करना, कुतरवाना, यह हराम और गुनाह कबीरा है। बेहती जबर देख लीजिए बालों के हकाम में हिस्सा नंबर 11 के अंदर, ये दोनों बराबर है, क्योंकि दाढ़ी का रखना यह वाजिब है। और कैसे? एक मुट्ठी हो, मुट्ठी किसकी हो? अपनी हो, हज्जाम की या हज्जाम के बच्चे की, यहां तक कि अपनी बीवी की भी मुट्ठी ना हो, एक मुट्ठी से सामने से, लेकिन मुट्ठी यहां से ना नापे। एक साहब की दाढ़ी को छोटी नजर आए, पूछा भाई क्या बात है आप दाढ़ी ये क्या है, एक मुट्ठी नहीं मुट्ठी पूरी, मैंने कहा नापो तुम यहां से नाप लिया, बहुत होशियार है ना माशाल्लाह, होशियारी करते हैं भाई, यहां से नापना, यहां से ठुड्डी से, ठुड्डी से सामने से, दाएं से, बाएं से, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना मेरे प्यारे दोस्तों ये वाजिब है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं ख्वाजा अजीज हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह, कल कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि क्या लेकर आयो, फरमाते हैं कि मैं अपनी दाढ़ी को पकड़ूंगा और ये शेर पढ़ूंगा, तेरे महबूब की यारब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूं। कि हमारी शक्ल हमारे बच्चा हो कोई प्यारा बच्चा, हम मोहब्बत करते हैं औलाद से तो मोहब्बत होती है, हमारे बच्चे की शक्ल का कोई और बच्चा हो आगे से, हमारा बच्चा वो परदेश चला गया और उसकी शक्ल का कोई और बच्चा नजर आ गया, कैसा उसके दिल लपकता है उसकी तरफ, क्यों जनाब? तो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में आपसे बढ़कर अल्लाह का कोई प्यारा नहीं है, क्यों जनाब? तो बस जो नबी सल्लम की जो शक्ल बनाएगा, आप सल्लम की शक्ल बनाएगा, अल्लाह का प्यारा नहीं बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छा फिर दाढ़ी मुंडाने का कोई फायदा भी नहीं है। कहते हैं जी स्मार्टनेस और हैंडसम जरा हम लगेंगे, अप टू डेट बनेंगे। मेरे दोस्तों, ये अप टू डेट नहीं है, बल्कि डेट एक्सपायर हो रही है। क्यों ये चीज है कि क्या काम आएंगी ये गल, हमारे काम नहीं आएंगे कब्र में अगर हम इसी तरह ले गए। अब रही बात क्या करें, अरे आसान काम है, खेत मौजूद है ना, खेत मौजूद है, खाद डालने की जरूरत नहीं है, बीज डालने की जरूरत नहीं है, ईमान का बीज लगा हुआ है, बस कैंची उस तरह दूर कर दिया, बस निकल आए, खत्म, खलास, कुछ और भी नहीं करना। मुल्ला से खिंचवाने की जरूरत भी नहीं है कि मौलाना साहब जरा मेरी दाढ़ी खींच कर बड़ी कर दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है, बस छोड़ दिया, छुट्टी खत्म, सुभान अल्लाह। मान लो अगर मान लो किसी के बाद ऐसे होते हैं कि दाढ़ी पूरी निकलती नहीं है, नहीं निकले जिसकी, अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह ताला की मर्जी, जितनी दाढ़ी अता फरमाए। ऐसे भी थोड़ी थोड़े बाल निकलते, किसी की यहां निकल आती है, लेकिन खुद से यहां फ्रेंच कट ना बनाए, क्योंकि अब क्या करते हैं, बाजे लोगों को हॉकी बहुत पसंद है, जाल साफ करते करते पूरा ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बनाते बनाते सब एक हॉकी हॉकी बना देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि दो जबड़े हैं ना, जहां इल्तकाए जबड़ा तैन है वहां पर हाथ रखे और नीचे वाले जबड़े पर दाढ़ी रखना, ये जरूरी है मेरे दोस्तों। और यहां दाढ़ी यहां से शुरू करें, इसको साफ ना करता चला जाए, ऊपर वाला गाल इसको साफ कर ले तो ये अच्छा है। कि जी हाफ फील्ड, आधी फील्ड खाली कर दे, कि जी हम चाहते हैं कि हमारी बीवी को बिल्कुल बिल्कुल जो है वो बाल जरा हो अच्छा नहीं लगता, आधी फील्ड अपने लिए, आधी फील्ड उसके लिए, वो उसके लिए खाली कर दे। प्यार का वादा 50-50, आधा आधा 50-50 हो गया ना जी, आधा मेरा आधा तेरा, आधा गाल मेरा यानी अल्लाह को दे दिया और आधा गाल तेरा, चल तू तेरे लिए है, ये हो गया ना 50-50, क्योंकि आखिर लाइफ पार्टनर है ना दोनों, मिलजुल के काम हो गया। तो एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारों की शक्ल है मेरे दोस्तों। आज आप बताइए, जरा अपने दिल पर, मुझे नहीं जवाब चाहिए, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद ही फैसला करें कि ये काम आएगी कि नहीं आएगी। मरने के बाद आखिर एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, क्या चीज काम आएगी, अपने हम खुद ही फैसला कर ले। ना किसी मुल्ला को जवाब देने की जरूरत है, ये नहीं होगा कि जी हम मुल्ला को जवाब देंगे, नहीं, अल्लाह को जवाब देना है। मुल्ला का काम क्या है, मसला बताना है सिर्फ कि भाई ये बात है, क्या काम आने वाली चीज है। असल में वाज़ो नसीहत इसी का नाम है कि परदेश, इसका नाम, इस मजलिस का क्या नाम है, परदेश में तज़किरा वतन, यानी वतन में हमें जाना ना, हमारा वतन असली क्या है, वो जन्नत है। ये तो दुनिया का है, आरजी है जी, हर आदमी आरजी है, कोई अपनी जमीनें, मोबाइल, एयर कंडीशन, लैंड क्रूजर, अपनी गाड़ियां और अपने डॉलर के अकाउंट, कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएगा। हाँ, ये आमाल काम आएगा। अल्लाह ताला ने क्या इनाम फरमाया कि जो गफार है अब उसको इनाम मिलेगा, सुभान अल्लाह। जिससे बाप राजी हो जाता है फिर बच्चे को इनाम देता है, अल्लाह ताला जिससे राजी हो जाता है उसको भी इनाम मिलता है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर आसमान से बारिश होगी। हदीस शरीफ में आता है ऐसे फरमा बरदारी की बरकत से तुम पर ऐसी बारिश होगी, तुम रात को सोगे बारिश होगी, तुम सुबह उठोगे तुम पता भी नहीं चलेगा बारिश है, लेकिन आसार से पता चलेगा। अल्लाह अकबर। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताजगी गुलिस्ताने जमील, बारिशें बारा बाराने पिरहानी दलील, फरमाते कि फूलों की चमक दमक और फूलों की रंगीनी को से पता चलेगा कि रात में बारिश हुई है, सुभान अल्लाह। फरमाते उसी तरह से वो अल्लाह वाले जो अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो उनकी सोहबतों के पास बैठकर पता चलता है यार इसके दिल में अल्लाह ताला की खास कोई मोहब्बत और दोस्ती का मोती मौजूद है इसके दिल में, और उसके पास बैठकर अल्लाह की मोहब्बत की तौफीक और रहमत और इनायत की पता चलता है, क्या इसके अंदर बात कुछ और है। तो आसमान से बारिश होगी और वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन, अल्लाह ताला तुझे माल भी अता फरमाएंगे और तुमको माल भी अता फरमाएंगे और औलाद अता फरमाएंगे, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद यहां पर फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने पहले माल फरमाया कि तुम्हें माल देंगे, फिर औलाद फरमाया, क्यों, औलाद ज्यादा हो जाएगी, फिक्र हो जाएगी, खाएंगे खिलाएंगे कहां से, घबराओ मत, पहले तुम्हारा माल भरेंगे फिर औलाद देंगे ताकि तुम्हें फिक्र ना हो। फिर तो फिर फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ जाओ तुम। अच्छा देखिए, फैमिली प्लानिंग पर बात चली तो प्लानिंग जो है, ये जो मंसूबाबंदी जिसको कहते हैं, प्लानिंग का मतलब यह है कि अपने रिसोर्सेस को, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो वसाइल मौजूद है, उन वसाइल को इस्तेमाल करना, इसका नाम है ना प्लानिंग। या काट देने का नाम है प्लानिंग, कि वसाइल को खत्म कर दो, वसाइल को खत्म कर दो, इसका नाम तो प्लानिंग नहीं कहेंगे ना जनाब, बल्कि वसाइल को इस्तेमाल करना। अब आप देखिए, अब प्लानिंग क्या हुई, अब बीवी आ गई, एक रिसोर्स आपको मिल गई, अब होना चाहिए मनसूबाबंदी करें। वो क्या मनसूबाबंदी करें, यार कम से कम 10-11 पुत्र तो होने चाहिए, एक को वकील बना देंगे, एक को बिजली के उस महकमे में ताकि बिजली मुफ्त मिलने लगे, एक को टेलीफोन के उसमें ताकि टेलीफोन भी मुफ्त हो जाए, एक को गैस में ताकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग ना हो, एक को थानेदार भी बना देंगे ताकि आड़े वक्त में कहा हुए क्या पुत्र है थानेदार, फिर आखिर में एक को मुल्ला भी बना देंगे ताकि आखिर जन्नत में भी तो लेकर जाए। ये क्या बात है कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर अपने सारे वसाइल काट दिए, कि बच्चे दो ही अच्छे, अंडे दो ही अच्छे, वो भी गंदे निकल आए। अरे मियां 10-11 में से एक भी काम का निकल आया तो काम बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्या बात है, मनसूबाबंदी करके अपने सारे वसाइल को तोड़ दिया, रोक दिया, बंद कर दिया, और इसका नाम रख दिया मनसूबाबंदी और फैमिली प्लानिंग। होना चाहिए 10-11 पुत्र हो जी, होकर लगा उसके लिए क्या है, अब रही बात कि इतने सारे बच्चों को खिलाएगा कहां से, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला पहले माल अता फरमाएंगे फिर औलाद अता फरमाएंगे। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो जो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, कि दुआ मांगी सरवर आलम सिखाई कि या अल्लाह ताला सख्त मुसीबत से, सख्त बला से हमें हिफाजत फरमाइए, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इसकी तफसीर में फरमाते हैं क़िल्लतुल माल व कसरतुल आयाल, कि माल थोड़ा और बच्चे हर साल मॉडल चला आ रहा है और माल है नहीं, खिलाएगा कहां से। फरमाया वाकई ये मुसीबत है, लेकिन किसके लिए, ये बवाल अल्लाह की तरफ से है। लगा जब बंदे ने इस्तिग़फ़ार कर ली, अल्लाह को मना लिया, अरे तुझे माल भी देंगे औलाद से पहले, ताकि तू घबराए नहीं कि इतने अल्लाह मियां हर साल मॉडल निकलना है, खिलाएंगे कहां से इसको। टोयोटा कंपनी के सारे मॉडल तो जमा कर लिया, अल्लाह मियां इनको रोटी भी खिलाइए। वाह, पहले फरमा दिया कि घबराओ मत, पहले तुम्हें माल देंगे फिर औलाद देंगे। एक साहब, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आएगा, मुसीबत में कर्जे हैं। हाँ, एक बात और याद आई, एक हमारे दोस्त बात लोग कहते ना कि जी मैं रिस्क में परेशानी है, दुआ कर दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। तो मेरा उनसे पहला सवाल होता है, तुम्हारे माँ बाप हैं? तो कोई कहता है जी माँ बाप है, कोई कहता है बाप है, कोई कहता है माँ है। मैंने कहा जी वो तुम्हारे पास रिस्क का इतना बड़ा दरवाजा होते हुए, इतना बड़ा वसीला होते हुए तुम रिस्क के लिए परेशान होता है? अरे अपने माँ बाप से दुआएं लो। वो कैसे, ये नहीं दुआ कर दो, एक है ये दुआ, ये भी सुन्नत है, कहना चाहिए, लेकिन एक ये है कि उनको खुश करे, उनकी खिदमत करे। मेरे दोस्तों, माँ बाप की खिदमत की बरकत से रिस्क मिलता है। अजीब बात है, यानी हमारे माँ बाप हमारे घरों में हो और हमारे रिस्क के लिए परेशान हो, वाकई अफसोस की बात है। ये माँ बाप के होते हुए रिस्क की परेशानी की है ही नहीं। इसलिए फिर क्या फरमाया, तो एक बुजुर्ग के पास मैं सुना रहा था, एक शख्स आया, हजरत माल के लिए परेशान हूं, दुआ फरमा दीजिए, कोई वजीफा दे। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स ने आया, हजरत औलाद नहीं हो रही, क्या फरमाया दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स आया कि हजरत शादी नहीं हो रही, हजरत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। शागिर्द बैठा था, उसने कहा हजरत अजीब है, आपने इस्तिग़फ़ार का एक ऐसा शरबत बना लिया, हर एक को वही पिलाए जा रहे हैं बस। भाई कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। बुजुर्ग ने फरमाया युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन। तो उसने कहा हजरत माल का तो चलो इसमें जिक्र आया, और जो है वो आसमान से बारिश का जिक्र आया, और जो है वो औलाद का जिक्र आया, बीवी का कहां से जिक्र आया कि जिसकी शादी नहीं हो रही उसको भी आप फरमा रहे इस्तग़फार करो, बीवी का तो इसमें जिक्र नहीं है। तो बुजुर्ग ने क्या फरमाया, आ मेरे मुर्शिद ने ये बात सुनाई, फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला औलाद अता फरमाना चाहेंगे उसको बीवी देंगे, बच्चा तेरे पेट से थोड़ी निकलेगा। इस्तिग़फ़ार की बरकत है, सुभान अल्लाह, कि इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता रहे, सुभान अल्लाह। तो क्या बारिश बरस रही है, औलाद मिल रही है, माल मिल रहा है, माल के लिए परेशान, कर्जे के लिए परेशान, अरे अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे। کیا؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے ربا بخش دیجئے، رحم فرما دیجئے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو مشکل کشا ہے اس اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی؟ خود سکھا رہے ہیں، ارے بھائی تم ہم سے مغفرت مانگو، کیا مطلب ہے؟ سکھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہتے ہیں. اب اللہ باپ کہے کہ بیٹا مانگو مجھ سے اور معافی مانگو، اور پھر باپ معاف نہ کرے، بتائے سب لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسا ظالم باپ ہے، بچہ معافی بھی مانگ رہا ہے باپ کے کہنے پر اور معاف نہیں کرتا. واہ، تو دنیا جانتی ہے کہ ایسا باپ رہ سخت دل باپ نہیں ہو سکتا. تو جو مولا جو باپ کو شفقت کرنا، ماں کو محبت کرنا سکھا رہا ہے، وہ ربا فرما رہا ہے مفرت مانگو، اس کا مطلب دینا چاہتے ہیں، تبھی تو حکم فرما رہے ہیں، انعام مل رہا ہے کہ سبحان اللہ، بارش بھی ہوگی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، باغات تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہاری پانوں میں نہریں جاری ہو جائیں گی، نہروں میں پانی جاری ہوگا تمہارے لیے، انعامات ہی انعامات ہیں. اور بس ایک وہ حدیث شریف کا ترجمہ کر کے اب ختم کرتا ہوں موضوع کو، کہ حدیث شریف کیا فرمایا، التائب من الذنب کما لا ذنب له. واہ، توبہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسے ایک آدمی ہے، اس نے داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی، بس ختم. اس لیے کیا فرمایا، اب داڑھی رکھ لی، اب ایک مٹھی داڑھی اس کے چہرے پر آ گئی. اب کیا کہہ رہے، ایک بزرگ شاعر فرماتا ہے، ہمارے پیر بھائی وہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے. مان لو پہلے داڑھی نہیں تھی، اب ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، پہلے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتے تھے، اب جی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، پہلے شراب پی رہے تھے، شراب چھوڑ دی، زنا بدماشی کے کام سب چھوڑ دیا، بدنظری سب چھوڑ دی، اب کیا ہے کہ جی ایک مٹھی داڑھی، اب ماشاءاللہ جماعت کی نماز، یہاں تک کہ فجر میں بھی جماعت کی نماز موجود ہے. تو کیا، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنا پیارا اور مقبول عطا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے میرے دوستوں گناہوں کو چھوڑ دینے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری والا دل بنا دیجئے. اے کریم مالک، ہمارے قلوب کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے اعمال عطا فرما دیجئے، اور آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ علماء ربانی ان کی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، اور ان اللہ والوں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ بادشاہت کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، مال و دولت، وزارت، حسن و جمال کا عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. یا اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ ہی کے بن کر رہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہمارے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو اخلاص عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی رحمت کا امیدوار بنا دیجئے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ عاجزی تواضع نصیب فرما دیجئے، توکل یقین تمام جملہ اخلاق حمیدہ ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت
ہمیں روحانی عطا فرما. اور اے کریم مالک اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے, اور اے اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو نیک صالح اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اے کریم مالک جو اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو اس ظلم سے باز فرما, جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجئے, ہم سب کو اپنے بڑوں کا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے, اور جو بڑوں ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے دل میں رحم ڈال دیجئے, رحم دلی اور نرم دل فرما دیجئے, رقیق القلب بنا دیجئے, مزاج کے اندر یا اللہ رحمت کو غالب فرما دیجئے, اور طبیعت کے اندر یا حلم عطا فرما دیجئے, برداشت کا مادہ عطا فرما دیجئے, اور جملہ روحانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے, ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے, اپنی دوستی کے اعمال عطا فرما دیجئے, اور آپ کی دوستی کو جو نقصان پہنچانے والے کام ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, اپنی رحمت کامل رحمت کامل عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت خاصہ کو ہم سب پر عام فرما دیجئے. یا اللہ چوٹیوں پر رحم فرما, بلوں میں مچھلیوں پر رحم فرما, دریاؤں میں سمندروں میں پرندوں پر رحم فرما, فضاؤں میں یا اللہ درندوں پر جانوروں پر رحم فرما, صحراؤں میں جنگلوں میں یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما, اور یا اللہ اپنے سارے عالم پر اپنی رحمت کو عام فرما دیجئے, اہل کفار کو ایمان کی دولت عطا فرما, اہل مسلمان کے ایمان کو کامل فرما کر سب کو ولی اپنا دوست بنا دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے جملہ دینی قدام کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے, اور اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ تعالی رحمت اور ہدایت کی تجلی کو سارے عالم پر نازل فرما دیجئے, اور یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما دیجئے, اخلاص بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری مغفرت کا بہانہ فرما دیجئے, ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں کے اولاد کے حق میں قبول فرما, ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کے حق میں قبول فرما, رشتہ دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں اس کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم تقبل هذه الدعوات بان لك الحمد, لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام, اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون, اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعدنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء, وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.